स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग एक ही बात पर बार बार विचार करते हैं और करना भी चाहिए कि हमें अपने जीवन को अच्छे से कैसे जीना या उसे और अच्छा कैसे बनाना। यदि रोज हम यह विचार करें और रोज इस विचार के मुताबिक अपने जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करें तो कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता कि जो हमें बाधक बने और हमारे जीवन को पवित्र न होने दें। जीवन की पवित्रता ही हमारा अपना लक्ष्य और यह हमारी अपनी उपलब्धि होनी चाहिए। हम लोग और बहुत सारी दुनिया की चीज़ें पा लेते हैं और उसी को अपनी उपलब्धि मानते हैं। मेरे ख्याल से तो हम सबको अपने जीवन में सुबह से शाम तक इसी बात की उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए कि आज मेरे जीवन में कितनी अच्छाइयाँ मैंने संचित करी हैं या कि आज मेरे जीवन से मैंने कौन कौन सी बुराइयों को बाहर निकाल करके अपने जीवन को अच्छा बनाया है। मेरे ख्याल से तो ये पुरुषार्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। हम सब लोग बहुत कर्मठ हैं, हम सब लोग काम करने में बहुत कहना चाहिए सक्षम भी हैं और करते भी हैं। सुबह से शाम तक हम कितना काम करते हैं, 24 घंटे काम करने वाले लोग देखने में आते हैं। ये कर्मठता बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी दिशा हम निर्धारित करें, वो हमें स्वयं करनी चाहिए। हम बाहर अपने शरीर के लिए, अपने आसपास के संबंधों को मेंटेन करने के लिए, इन सब के लिए और अपने संसार को बहुत व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन वो सारा पुरुषार्थ उस समय मिथ्या पुरुषार्थ हो जाता है जबकि उस पुरुषार्थ के बावजूद भी हमारा अपना आत्मा निरंतर मलिनी होता है, उसकी पवित्रता बढ़ नहीं पाती है, तो फिर हमारा ये पुरुषार्थ समीचीन नहीं कहलाएगा, मिथ्या पुरुषार्थ कहलाएगा। तो कर्मठता तो हमें होनी चाहिए। पहली शिक्षा है कि व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, आलसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कर्मठता किस तरह की हो, हम कर्म करें तो किस तरह का करें, वही कर्म जिससे कि हम कर्मों को काट सकें, एक ऐसा कर्म जिसके करने से मेरे पाप कर्म कट जावे, जिसके करने से मेरी मलिनता हट जावे और मेरा मन निर्मल हो जावे, मैं ऐसे कर्म ही करूंगा। दिन भर में हम कितने कर्म करते हैं, उनमें हम इस तरह का एक विचार अगर अपने मन में लाएं और ऐसे कर्म करें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने इन कर्मों के द्वारा ही इन कर्मों को ना काट सकें। कर्म करने वाला ही कर्मों को काटता, इसीलिए शायद रखा हुआ है कि श्रवण जो श्रम करे वो श्रवण, श्रम तो सब करते हैं, तो श्रम तो हाथ पैर और वाणी से किया जाने वाला श्रम नहीं है, ये अपने चेतना को जागृत करना, तपस्या करके और अपने मन को निर्मल बनाना, वास्तव में यही श्रम श्रेष्ठ है। और उसी श्रम को करने वाले साधुओं को श्रमण कहा जाता है। सामान्य व्यक्ति भी श्रम करता है, परिश्रम करता है, लेकिन काहे के लिए? अपने शरीर की सुख सुविधाएं जुटाने के लिए। भैया वैसे श्रम या वैसी कर्मठता की चर्चा नहीं है, हमें ऐसी कर्मठता या ऐसा श्रम अपने जीवन में लाना चाहिए जिसके माध्यम से कि हम अपने मन को मलिन होने से बचा सकें या कि हम उसे निर्मल बना सकें। दूसरी चीज है जो समझने की है, वो है कि हम कृत्रिमता से बचें, आडंबर से बचें, हम निरंतर प्राकृतिक जीवन जिए, जो सहज जीवन है वो जीने की कोशिश करें। बहुत संक्षिप्त में मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपसे आज कह रहा हूं। पहली चीज है कि कर्मठता, वो अपन ने समझ लिया। दूसरी चीज है कि हम बहुत कृत्रिम होते जा रहे हैं, जितना परावलंबन है उतनी ही कृत्रिमता है। कृत्रिमता और है क्या चीज, आडंबर और है क्या चीज? हम जो जैसे जितने नहीं हैं वैसे और हम प्रकट करें, वैसा हम दिखाने की कोशिश करें। हम सबके अगर देखें तो हम अपने घर में प्लान करते हैं तो चार कमरे तो कम से कम बनाते ही हैं। कोई कह सकता है कि हमारे घर में एक ही कमरा है, तो भैया एक कमरा हो फिर भी चार कोने तो होंगे ही होंगे, नहीं होंगे? एक कमरा ऐसा होता है जिस कमरे में कि हम दुनिया में जो हमने दुनिया को अच्छा मालूम पड़ता है वो सब इकट्ठा करके रखा है, हमारी सारी डिग्रियां, हमारे सारे जो सम्मान पत्र हैं, जो जो अच्छी चीजें हमने अपने जीवन में हासिल की हैं वो सब हम वहां रखते हैं, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। हम उसमें लोगों को आकर के बिठाते हैं, हम लोगों को उतना ही दिखाते हैं, जो लोग हमारे अपरिचित हैं उनको हम उतना ही दिखाना पसंद करते हैं। एक कमरा और होता है जिसमें कि हम सोते हैं, जिसको हम बेडरूम कहते हैं, उर्दू में इसको ख्वाबगाह कहते हैं, जहां हम सपने देखते हैं अपने भौतिक सुखों के। और क्या, ख्वाबगाह इसलिए लिखा है कि जहां हम सपने देखते हैं, जहां हम एक भ्रम पैदा करते हैं अपने मन में कि शायद हमें सुख सुविधा के साधन जुटाने से सुख मिल जाएगा, वहां हम अपने थोड़े से लिमिटेड लोगों को लेके जाते हैं, वो हमारे सपनों का लोक है, एक हमारा जो प्रकट जिसमें हम सबको ले जाते हैं, और एक है किचन, हम बहुत बढ़िया कपड़े बाहर पहन के निकलते हैं, कोई ये ना जान ले कि हमारे पास खाने को भी ढंग का नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी माली हालत मालूम पड़ जाती है हमारे खाने के ढंग से। विनोबा ने लिखा कि मैं व्यक्ति को उसके किचन से पहचान जाऊंगा कि किस स्वभाव का है, उसकी रसोई से पहचान जाऊंगा वो किस स्वभाव का है, कैसी रसोई बनाता है और कैसी खाता है, इससे मालूम पड़ जाएगा व्यक्ति कैसा है। वहां हम अपने बिल्कुल फैमिली मेंबर्स जो बहुत निकट के हैं उनको ही ले जाते हैं। ये तो सबके घर में होते हैं, लेकिन एक और ऐसा कमरा होता है, कबाड़ वाला कमरा होता है, कबाड़ वाला कमरा जिसमें सब कचरा। अब उसको कचरा अपन हमारे ख्याल से मानते होते तो बाहर नहीं फेंक देते, लेकिन मानते नहीं है, वहीं के वहीं खिसका के दीपावली पर साफ सूफ करके वहीं धर देते हैं। ऐसा एक कमरा हर एक के घर में प्लान करता है, वो प्लान नहीं करता, वो मेरे ख्याल से अपने आप प्लान हो जाता है। वो चौथा कमरा या कि वो चौथा कोना जिसमें कि सब कुछ आल जाल कबाड़ पड़ा हुआ है, ऐसे ही तो हमारे भीतर भी हैं कुछ चीजें हैं जिनको कि जो अच्छी लगती हैं सबको, वो हम बाहर प्रकट करते हैं। हमारी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, हमारे अपने सपने क्या हैं, ये हम सबको नहीं दिखाते, और हमारे भीतर वो जो चौथा कमरा जिसमें कचड़ा पड़ा हुआ है वो तो हम किसी को नहीं दिखाते। हम भी उसको साल भर में एकाध बार देखते हैं, नहीं तो हम भी नहीं देखना पसंद करते उस कबाड़ वाले कमरे को। भैया अपने भीतर वाले उस कबाड़ के कमरे को जिसमें कि मलिनताएं पड़ी हुई हैं थोड़ा सा देखने का स्वभाव बनाना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि सामायिक के समय क्या करना चाहिए, सामायिक के समय यही करना चाहिए कि कितना कचरा दिन भर में इकट्ठा हो गया, कल से आज तक में कौन कौन सी गंदगी इकट्ठी की मैंने, कौन कौन सी भलाई की, ये तो देखना ही सामायिक के समय में, भगवान के गुणों का स्मरण करना और अपनी आत्मा वैसी ही गुणवान है इसका विचार करना, लेकिन मेरी उस गुणवत्ता को मलिन बनाने वाली कौन सी चीजें मैंने दिन भर में करी हैं। वो जो कबाड़ वाला कमरा है ऐसा ना हो कि हम दूसरों के दिखाने वाले कमरे को खुद भी देख करके प्रसन्न होते रहें कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, देखो कितने सम्मान पत्र, कितनी डिग्रियां हैं। शायद हम दूसरे की आंख से स्वयं भी अपने को देखने लगते हैं। नहीं, हमें अपने को गौर से देखना चाहिए। हमारे भीतर की जो मलिनताएं हैं उन पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तब हम आडंबर से मुक्त हो पाएंगे, तब हम कृत्रिमताओं से मुक्त हो जाएंगे। हम जैसे हैं वैसे के वैसे अपने को देखें। हम अगर भले हैं तो ठीक है, और अगर हम बुरे हैं तो हमें अपनी बुराइयों को स्वयं देख करके उन्हें हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही निराडंबर होने की प्रक्रिया है। लेकिन आज धीरे धीरे अपन नहीं देख रहे हैं स्टेटस पॉइंट है। भले ही हमारी कैसी भी स्थिति हो, लेकिन चार लोगों के बीच में और हमारी बदनामी ना हो जावे, इसलिए हमें ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। रात में हमें अगर हम सबको नहीं बुलाएंगे खाने पर तो लोग कहेंगे बड़े बैकबर्ड हैं, हैं? तो हमें रात में, अब विवाह का सीजन चल रहा है, हम तो सुनते रहते हैं सब तरह की चीज़ें, तो हम तो रात में ही खिलाएंगे भैया, हम कैसे खिला सकते हैं? ऐसे चलता है कहीं कि महाराज के कहने से ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा अभी कल मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा निर्णय वहां पर जब मैं चीपी टोला में था वहां के लोगों ने लिया और उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि आतिशबाजी नहीं चलाई। बताइए कितने सारे पैसे ऐसे ही चले जाते हैं, पैसे तो चले ही जाते हैं, पैसे कमाने में कितनी हिंसा हुई होगी और उस पैसे के वेस्ट करने में भी इस तरह वेस्ट करना कि जिसमें और हिंसा हो। एक बहुत अच्छी चीज हमने अपने उसमें शामिल कर ली। हमने रात में अगर खाने की सारी सामग्री हटा दी और सिर्फ पानी पीकर के वापस लौट आए तब भी ऐसा नहीं मानना कि शादी में नहीं गए थे या कि शादी नहीं होगी। जिंदगी हम कहां से शुरू कर रहे हैं? सप्तपदी रखा गया था, सात व्यसन का त्याग करने की सौगंध लेते हैं सप्तपदी में, और हम उसी व्यसन से शुरू कर रहे हैं अपना विवाह। भोगोपभोग की अनाप शनाप सामग्री से शुरू कर रहे हैं जिसमें कि भोगोपभोग का व्रत लेना चाहिए था। परिग्रह परिमाण की जगह पर हम परिग्रह परिमाण की जगह पर एक कहना चाहिए परिग्रह का दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास इतना है, हम इतना खर्च कर सकते हैं। नहीं भैया, परिग्रह परिमाण की शिक्षा मिलनी चाहिए, भोगोपभोग के परिमाण की शिक्षा मिलनी चाहिए विवाह से। विवाह कोई सामान्य चीज नहीं है, वो सिर्फ सामाजिक अनुष्ठान नहीं है, वो धार्मिक अनुष्ठान है। ऐसा नहीं है कि उसमें फूहड़ गाने ही बजें, उसमें धर्म के और भजन भी बज सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब उसमें हम पूजा करते हैं तो फिर वो धार्मिक अनुष्ठान तो होना ही चाहिए, और हमने उसे इसलिए धार्मिक अनुष्ठान माना था, आडंबर नहीं था वो। क्यों? क्योंकि हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए हम सदगृहस्थ बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्या करें, हमसे मुनि नहीं बना गया तो सदगृहस्थ बन रहे हैं या कि हम एक व्यसनी बनने चले जा रहे हैं? आज के विवाह की प्रक्रिया से तो यही लगता है कि हम सदगृहस्थ न बन करके और भोग विलास की तरफ ही बढ़ रहे हैं। भैया, विवाह भोग विलास के लिए नहीं है, विवाह तो अपने आत्म कल्याण की प्रक्रिया में शामिल था। कि हम ऐसे मुनि बन के आत्म कल्याण नहीं कर पाए तो हम अपनी इच्छाओं को सीमित करके और धीरे धीरे अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। हमारे सामने आदर्श हैं, रामचंद्र जी आदर्श हैं हमारे सामने, सीता जी और रामचंद्र जी की पेयर आदर्श है हमारे सामने, अंजना और पवनन जय आदर्श है, ये हमारे आदर्श हैं, इनको हमने भुलाना नहीं चाहिए और हमें इस आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग के नाम आज भी हम लेते हैं, इनने तो आडंबर नहीं किया। हम सोचते हैं कि हम आडंबर करेंगे तो हमारा नाम बहुत होगा। नहीं भैया, आडंबर करने वाले का ज्यादा दिन तक नाम नहीं होता, जैसे कि फुलझड़ी नहीं होती एकदम इतनी तेज रोशनी करके जल जाती है, ऐसे ही ये मामला है आडंबर का। जरा सा सबको चमत्कृत कर देता उसके बाद सब शांत ठप मामला, यही है। अपन को इससे बचना चाहिए। अगर एक बार अपन तय कर लेंगे और अपन शुरू कर देंगे उस चीज को तो कोई दूसरा भी देखेगा, करिए इतने बड़े आदमी होकर के इन्होंने इतना ऑर्डिनरी बिना खर्च के विवाह किया, हम भी ऐसे ही करेंगे। अभी तो ये कंपटीशन है कि उन्होंने इतना किया तो हम क्या अपने घर के छोटे हैं कि हम भी अपने घर के बड़े हैं, हम इससे ज्यादा फूंक सकते हैं कह रहा हूं। हाँ, एक तरह से फूंक नहीं तो है ये, अपनी संपत्ति को जिस मेहनत से कमाया उसके लिए। भैया, ये कृत्रिमता है, एक कृत्रिमता दुख में ही डालती है और कुछ नहीं, सुख नहीं मिलता इससे। जरा भी हम अगर इसमें सुख महसूस करें तो आप मेरी बात को गौर मत करना। लेकिन एक आकुलता ही बढ़ाने वाली ये प्रक्रियाएं हमने अपने जीवन में शामिल कर ली हैं। भोगो भोग की सामग्री इतनी अनाप शनाप इकट्ठी कर ली है हमने कि उससे हमारे जीवन में आडंबर ही बना है, पराश्रितता ही बड़ी है, स्वाश्रित नहीं हुए हैं हम। पहले के लोग मोटा खाते थे, मोटा पहन लेते थे और शांति से जीवन जीते थे, भले विचार रखते थे। आज पतला खाना पतला पहनना दोनों ही चीजें और दोनों ही संक्लेश का कारण बने हैं, दोनों ही हमारे अपने जीवन को पतित करने में, हमारे जीवन को मलिन करने में कारण बने हैं। नहीं बने हैं, आप स्वयं विचार करिएगा इस चीज का। तो ऐसे आडंबर से बचना चाहिए, भैया कृत्रिमताओं से बचना चाहिए, अपनी ओरिजिनलिटी, हमारी जितनी स्थिति है हम वैसा ही करेंगे, हमें आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना उसके भी हमारा जीवन शांति से चल सकता है। और तीसरी चीज, जो साधन मिले हैं हमको उनका सदुपयोग करना चाहिए। कौन से साधन मिले हैं भैया अपने जीवन के कल्याण के? बहुत बड़े साधन मिले हैं कल्याण के, सच्चे देव गुरु शास्त्र, ये साधन ही तो हैं। और अगर इस तरह नहीं देखें हम, ये बहुत बड़ी अगर चीज लगती है तो और दूसरी चीजें देख लो। अच्छा ये बताओ, घर में बिजली है, बिजली एक साधन है रोशनी के लिए, लेकिन हम कभी उसका दुरुपयोग करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? मुझे बहुत पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं करते। हम जब कपड़े साफ सुथरे करके पहनते हैं हम उनका कैसा सदुपयोग करते हैं? गंदी जगह बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। क्यों? गंदे हो जाएंगे कपड़े, फिर साफ करना पड़ेंगे। अरे जब इन छोटी छोटी चीजों में हम ध्यान रखते हैं तो इसी तरह से हम अपने जीवन के लिए बारे में नहीं ध्यान रख सकते कि यहां नहीं बैठेंगे, यहां मेरी आत्मा मलिन होती है, यहां नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरे कपड़े मलिन होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां शामिल नहीं होंगे, यहां मेरी आत्मा मलिन होती है, यहां इन लोगों के संपर्क में नहीं रहूंगा मैं, यहां मेरी आत्मा मलिन होती है, यहां मेरे विचार गंदे होते हैं, मैं ये चीज का उपयोग नहीं करूंगा इससे कि मेरे विचार गंदे होते हैं। अरे इतना थोड़ा सा इन साधनों का हम सदुपयोग इस दृष्टि से कर ले, इतना सा ही है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं कल बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था कि अगर हम इतनी छोटी सी चीज भी अपने जीवन में शामिल कर लें कि जो भी साधन मिले हैं उन साधनों का मैं सदुपयोग करूंगा, हम सोचते हैं कभी फिर करेंगे, नहीं भैया तुरंत के तुरंत हम उन साधन का उपयोग कर लें, नहीं तो वे साधन हमारे हाथ से और जब गायब हो जाते हैं तो उन्हीं साधनों को जुटाने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब ये साधन हमें मिल जाते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के तब हम उनका दुरुपयोग कर लेते हैं, हम उनका सदुपयोग ही नहीं। सदुपयोग नहीं करना भी दुरुपयोग ही है, हाँ यही मान के चलना। अगर हमने अपनी आंख का सदुपयोग नहीं किया, जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करे, तो समझना दुरुपयोग ही किया। हाँ ऐसे समझें उसको, अगर हम अपने हाथों से किसी को दान नहीं दिया है तो मानिएगा इन हाथों का हमने दुरुपयोग ही किया होगा, इससे पाप ही कमाया होगा, कुछ थोड़ी करा होगा, और क्या करा होगा, दूसरे की मदद ही नहीं करी हमने, हमने अपने मन से दूसरे के हित का विचार नहीं किया, तो समझिएगा कि इस मन की सामर्थ्य का हमने दुरुपयोग ही किया है। हमने इसके द्वारा क्या कहते हैं कि आठ ध्यान रोध ध्यान से बच जाने का नाम ही सामायिक है, धर्म ध्यान है और कुछ नहीं है। तो हम इस तरह की प्रक्रियाओं से बचें तो ही हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा, और हम अकेले कहते चले जाएं तो नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको और बस, आज इतना ही मन है कि इतनी ही बात करूंगा। अपने जीवन में इन सब को करके देखना भी चाहिए, मैं सोचता हूं उससे अपने को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ सचमुच में ये चीज़ें करके देखी हैं तो अच्छा लगा। नहीं तो मुझे लगने लगता है कभी कभी, बहुत जब बोलता रहता हूँ हमेशा, कोई ना कोई चीज़ कहता ही रहता हूँ, विचार देता रहता हूँ, फिर बाद में लगने लगता है कि क्या होगा इस सबसे। एक तरफ यहाँ हम बैठे हैं इसमें भव उसमें बैठे हैं, एक तरफ वहीं पर चार कदम दूर अगर देखें तो क्या चल रहा है, वहाँ संसार है, यहाँ हम संसार से बचने के लिए विचार करने बैठ जाते हैं, थोड़ी दूर देर के बाद उसी में जाकर के हम उसमें शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इसमें भी शामिल होते हैं, उसमें भी शामिल होते हैं। हमारा अपना कोई जमीर है या नहीं है, हमारी कोई अंतस चेतना है या नहीं है, किसमें शामिल होना किसमें शामिल नहीं होना, या कि सिर्फ एक अंधी दौड़ है और बाकी क्रियाएं भी दोहरा लेते हैं हम धर्म की और बाकी सब वो भी करते रहते हैं। कभी तो कुछ हमारे मन में आना तो चाहिए ये चीज कि नहीं अब मैं शामिल नहीं होऊंगा उन सब चीजों में, लेकिन हम उसमें भी शामिल हो जाते हैं। हम किसी गलत काम की उपेक्षा ही नहीं करते। हाँ हम लोग तो जहां भीड़ देखते हैं वहीं पर शामिल हो जाते हैं, क्या करें, नहीं तो हमारा संसार कैसे चलेगा भैया, उनके यहां पर बुलावा आया है चलो उनके यहां चलते हैं, नहीं तो उनके यहां नहीं जाएंगे तो हमारे यहां रिश्तेदारी में नहीं आएंगे वो, तो जरा देख तो लें उनके यहां जाने से पहले कि वे कर क्या रहे हैं। अगर वे हमारी आत्मा को मलिन करने का उपाय कर रहे हैं तब तो हम नहीं जाएंगे। वे अगर ऐसा संगीत सुना रहे हैं जिससे कि चेतना हमारी मलिन होती है तो हम वहां शामिल नहीं होंगे। वे अगर हमें रात में खिला करके और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं तो धन्यवाद, हम आपके बाहर से गेट से ही और आपको जो भी गिफ्ट लगती है वो दे करके वापस आ जाएंगे, हम भीतर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा मन फिर आसक्त हो जाएगा, मेरा मन फिर उसी चीज में जिससे कि मैं विरक्त होना चाहता हूं उसी आडंबर में लग जाए, यही है ना। और एक बार हम उस आडंबर में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारा मन क्या करता है कि हम भी जब दूसरे को बुलाएंगे तो वही आडंबर करेंगे जो कि उनने वहां करा था, नहीं तो हमारे यहां आएंगे वो हमारे यहां देखेंगे कि कुछ भी नहीं करा इनने, हमने तो इनको बुलाया था तब कितने भव्य पंडाल विशाल में बिठाया था, 5 लाख रुपए का पंडाल बना के बिठाया था और इनने तो क्या लगा रखा है कि पैसे नहीं है क्या? पैसे तो हैं, उनसे कह दो लेकिन फोकट बर्बाद करने के लिए नहीं है। ये नहीं कह सकते हम हिम्मत करके, नहीं हिम्मत करके नहीं कह सकते, वो हम मजबूर हैं वहां पर। अगर हम लड़की वाले हैं तो और ज्यादा मजबूर हैं, लेकिन लड़के वाले हैं तब भी हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम कह सकें कि हम रात में नहीं देंगे। कह पा रहे हैं कम से कम उस लड़की वाले पे तो कृपा हो जाएगी आपकी, वो अगर मन बना रहा होगा कि हमें रात में ना खाना खिलाना पड़े, और अगर खुद बराती कह देवे कि नहीं कोई हम लोग रात में नहीं खाएंगे आपके यहां पर आएंगे, तो इतना हम इतना नहीं कर सकते हैं। और इतनी इतनी बातें हमारे पास, इतना इतना धर्म करने वाले लोग हम, इतना अहिंसावादी लोग हम, अरे वाह भैया फिर तो भलेहारी हम लोगों के। माने हमारा दोनों काम चलता रहे, हमारा संसार भी वैसे ही चलता रहे और इधर हम घंटी लाते रहे और जलधारा करते रहे, दोनों ही चलते रहे। नहीं ऐसे तो कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए तो लिखा हुआ है आचार्य भगवंतों ने कि एक तरफ गज स्नान किया, एक तरफ जो है बढ़िया से घंटे भर नहाया धोया, फिर 23 घंटे धूल में लोटे सुखी चढ़ोर बना लिया, एक घंटे धर्म ध्यान किया बढ़िया से मन पवित्र किया और 23 घंटे उस पर मलिनता और चढ़ा ली। ऐसे थोड़ी काम चलेगा भैया, ऐसे तो जिंदगी निकल जाएंगी, कई निकल गई होंगी ये भी निकल जाएगी। नहीं, थोड़ा सा मलिन होने की प्रक्रिया को कम भी तो करना चाहिए। अच्छे होने की प्रक्रिया को हमने शुरू किया है तो मलिन होने की प्रक्रिया में थोड़ी थोड़ी कमी तो आनी ही चाहिए। वो एक उदाहरण है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम अपने साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाते, जब मिलते हैं तब उनका उपयोग नहीं करते, जब हमारे पास उन चीज़ों का अभाव होता है तो उन चीज़ों के लिए पाने की हम कोशिश करते हैं, मिल जाती तो हम कीमत ही नहीं करते। पर हमें कीमत करनी चाहिए उन सब की जो चीज़ें हमें मिली हैं, और हमें सबसे बड़ी चीज़ तो हमें बुद्धि मिली है कम से कम सोचने की, उसका सदुपयोग तो कर लेना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति था लेकिन उसको मालूम पड़ा कि गुरुओं की सेवा करने से और बहुत लाभ मिलता है, तो उसने कहा चलो गुरुओं की सेवा करते हैं। तो एक गुरुजी को पकड़ लिया उसने, अच्छे बाबा जी मिल गए उसको, उसने सेवा एवा करी, खूब दिन तक सेवा करी, और उसको ये मालूम पड़ गया था कि गुरुजी के पास में एक पारस पत्थर है जिसको छिवाओ तो सोना बन जाता है, हैं? अब बहुत सेवा करी उसने, और एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा कि बोल क्या मांगता है, तो उसने कहा वो जो आपके पास पारस पत्थर है। गुरुजी ने कहा मैं जानता था तेरे को वही चाहिए होगा, पर देख एक दो दिन के लिए दूंगा, जितना सोना बनाना उतना सोना बना देना। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी आप तो एक दिन क्या एक घंटे को दो तो भी मैं काम मेरा बना लूंगा मैं, हैं? और दो दिन की मोहलत लेकर के पारस पत्थर लेकर के बड़ा प्रसन्न, और इतनी प्रसन्नता कि कई दिन से सोया नहीं था वो, हैं? उसने कहा अब तो मिल गया पारस पत्थर, बना लेंगे सोना, क्या लगना है, जरा छुपाना है और खत्म बन जाएगा। और पहले दिन तो उसने पारस पत्थर अपने सिरहाने रखा और सुख की नींद सोया। अपन तपन के साथ में भी ऐसा नहीं है क्या? है, जब तक नहीं मिलता है तब तक खूब मेहनत करते हैं उस चीज को पाने की, और जब मिल जाता है तो सिरहाने रख करके सो जाते हैं, उपयोग उपयोग करने की फुर्सत नहीं रहती। अब वो एक दिन उसका गुजर गया, दूसरे दिन सवेरे से वो तो तैयार था बिल्कुल कि आज निकलेंगे, आज सारे मार्केट लोहा बाजार में जाएंगे और पूछेंगे कि अब बहुत सारा लेना है, कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी है। अब तो वो अपने को बहुत रईस समझ रहा था, अभी है नहीं एक दाम पारस पत्थर पर, लेकिन रईस समझ रहा है वो। अब जा रहा है पूरे उसमें मार्केट में घूम रहा है, किस रेट में मिलेगा, सबसे सस्ता कहां मिलेगा पूरे में कितने, और मुश्किल दुकानदार की समझ में आया कि सस्ता मिले। लेकिन बात फिर अटक गई, बात इस बात पे अटक गई कि देखो माल तो हम खरीदेंगे लेकिन लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज तुम्हारा,
तुम इतने से भरवा के हमारे घरे तक डारो, ये को पैसा नहीं दे हम। अब बताओ आप। उसने कहा नहीं, ये इतना सामान ले रहे हैं, पूरा का पूरा मार्केट खरीद रहे हैं लोहे का, कोई सामान्य बात है क्या? इतना ले रहे हैं और तुम इतना भी नहीं कर सकते कि तुम अपनी गाड़ी में इसको लोड करवा के हमारे यहां पर डलवाओ और उसका खर्चा नहीं लो। जाओगे कहां? कल आएगी, शाम तक आएगी। और शाम हो गई और सौदा तय नहीं हुआ, पड़ा हुआ है सारा का सारा। उसने सोचा कि कौन गुरु जी अब भी आए जा रहे हैं, दो दिन का कहा था, अभी तो पूरी रात बाकी और सवेरे इतने जल्दी थोड़े ही आएंगे कि मुंह उठते ही आ जावे। व्यापारी है, रात भर सोचेगा, कल सवेरे तो सौदा तय ही हो जाएगा। और बस सौदा तय हुआ और वहीं रखा और मैंने छुआया और बात खत्म, है ना? ऐसे ही। और आखिर हुआ क्या? यही कि सौदा तय नहीं हुआ और रात भी गुजर गई और सवेरे इनने तो सोचा था कि जग करके हम सारा काम कर लेंगे, लेकिन जगाया गुरुजी ने और जगाते ही साथ कहा कि लिया पारस पत्थर। इनने कहा अभी कहां, अभी तो पूरा काम कर ही नहीं पाए। बोले दो दिन गुजर गए, तुम चाहते तो इतने ही कर लेते कि जितने साकल कुंदा हते दरवाजे के वही छुआ लेते, लेकिन वे भी नहीं छुआ पाए। लोहा तो बात की बात है, खरीदवे की अपने जीवन में जो जो था उसमें ही उसका ही उपयोग कर लेते तो ही था, और दूसरा कहां से खरीद करके लाओगे? भैया ऐसे ही अपने साथ हो जाता है कि अपन को जो प्राप्त है उसको भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते, और चीजें मिलेंगी उनका मैं ऐसे ऐसे उपयोग करूंगा, ऐसे मैं उसका सदुपयोग करूंगा। नहीं, पूरा जीवन बीत जाता है, अपन के पास जो है उसका भली प्रकार से उपयोग कर ले। मैं बुद्धि मिली है तो, अगर इंद्रियों का ज्ञान मिला है तो, कपड़े लत्ते मिले हैं तो, सब उपयोग, सबका उपयोग, जो घर गृहस्थी का सामान मिला उसी का उपयोग कर।
यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा।